आज जो विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है हिंदी, और हम बात करने वाले हैं पढ़े कैसे हैं। जी हाँ, आज हम जानेंगे पढ़ने के तरीके को, और जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी एक्सपर्ट। हम सबसे पहले आपको उनसे मिलवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोनिका कादियान जी, एकेडमिक ऑफिसर शैक्षिक विभाग NIUS से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ।
जी धन्यवाद।
तो मैम, जैसा कि हमारी चर्चा है पढ़े कैसे, मैं चाहूंगी हम चर्चा को शुरू करें।
जी, सभी श्रोताओं शिक्षार्थियों का मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उसके बारे में आपको भी उत्सुकता हुई होगी कि इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे और क्या जानेंगे। तो ये पाठ का जो शीर्षक है पढ़ें कैसे, ये अपने आप में ही एक अनूठा शीर्षक है। इसके माध्यम से हम ये जान पाएंगे कि अगर हम पहले से पढ़ी हुई सामग्री को पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ें, अगर पहले हमने वह सामग्री नहीं पढ़ी है, बिल्कुल पहली बार ही हम वो सामग्री पढ़ रहे हैं तो हम उसे कैसे पढ़ेंगे, और किसी भी पठित या अपठित सामग्री में कौन से उपयोगी बिंदु हैं, कौन से मुख्य बिंदु हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए, और उसका केंद्रीय भाव क्या है, ये भी हम जान सकेंगे। जो भी सामग्री हम पढ़ें हम उसका विश्लेषण कर सकें, तो इस बारे में भी हम जानकारी देना चाहेंगे आप लोगों को। और इसमें इस चर्चा का जो मुख्य प्रतिफल होगा वो यह होगा कि आपको इस बारे में सक्षम बनाना है कि आप जो भी सामग्री पढ़ें आपका पढ़ने का तरीका क्या होगा, और उनमें कौन सी वो छिपी हुई बातें रहती हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि भाषा का एक ऐसा प्रवाह होता है जो हम सामान्य रूप से ही उसे ग्रहण करते हुए चलते हैं, और इन छोटी छोटी बातों पर, इन तकनीकी कह सकते हैं, इन गूढ़ बातों पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। मैं आपको आपके बचपन की तरफ ले चलती हूँ। आपको याद है कि जब आपने पहली बार अपनी पुस्तक पढ़ना आरंभ किया था तो आपने किस तरह से, मान लीजिए आप सिर्फ हिंदी की ही बात करें, किसी भी भाषा के लिए ये जो चर्चा है ये उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो यहाँ ये हिंदी का कार्यक्रम है तो हम हिंदी भाषा की अगर बात करें, तो आप जब आपने भाषा ज्ञान का जो सफ़र है वो आरंभ किया था, आपके हाथ में किताब आई थी और आपने धीरे धीरे उस पहली किताब के बाद आपने और किताबें आपने पढ़ी, और आपको आज इस स्तर पर आपको लग रहा होगा कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना आ गया है, लेकिन आप भूल गए होंगे कि आपने जब अपना ये पढ़ना शुरू किया था तब आपको कितनी कठिनाई होती थी, तब आपको हर एक अक्षर कितना कठिन जान पड़ता था, आपको बहुत मुश्किल होती होगी कि ये उस अक्षर की पहचान करना है, उसे जोड़ जोड़ कर किस तरह से पढ़ना है, किस अक्षर के साथ कौन सी ध्वनि है, किस ध्वनि का उच्चारण करना है, इस बारे में निरंतर अभ्यास करने से, बार बार आपके जो घर में बड़े हैं उनके द्वारा आपको बार बार बताने पर, समझाने पर, बार बार अभ्यास कराने पर आप इस कार्य में निपुण हुए होंगे। अगर आपको ये वो जो प्रक्रिया है आपको याद आई होगी तो आपको पता, मतलब अब आप समझ गए होंगे कि ये बहुत ही कठिन प्रक्रिया से आप लोग गुजरे होंगे। इसलिए ही ये कहा जाता है कि जो भाषा है वो एक सामान्य एक प्रवाह की भांति है, और इस प्रवाह में हम आसान से कठिन की तरफ जाते हैं। तो हमारा जो भाषा सीखने का जो क्रम है वो भी इसी रूप में ही कार्य करता है। हम सबसे पहले जब सीखते हैं तब हम वर्ण सीखते हैं, हम अक्षर सीखते हैं, उसको भी हम जब उसका भी जब हम उच्चारण करते हैं तब हम उसे तोड़ तोड़ कर उसका उच्चारण करते हैं। आपने किसी छोटे बच्चे को ही देखा हो बोलते हुए, जब वो बात करता है और कमल बोलता है, अब हम कमल बोलते हैं तो हम एकदम से धारा प्रवाह में हम इस शब्द को हम उच्चरित करते हैं। लेकिन एक बच्चा जब इसका उच्चारण करता है कमल इस तरीके से करता है, कलम कलम, फिर वो ऐसे इस तरह से उसे उच्चरित करता है। तो ये जो उच्चारण है किसी भी अक्षर का जो ज्ञान है, ये भाषा सीखने की प्रक्रिया में आरंभिक कदम है। प्रारंभ में ये पहला कदम होता है जब हम किसी भी भाषा की जो लिपि है उसका ज्ञान हम ग्रहण करते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अक्षर ज्ञान यानी पढ़ने का जो पहला चरण है, जो पहला कदम है, जो कह सकते हैं पहली सीढ़ी है, वो क्या है, भाषा के अक्षरों की पहचान करना और उनसे बने शब्दों की पहचान करना। हमने अक्षर की पहचान की कि ये जो अक्षर है ये क है, म है, ल है, और उसके बाद इन अक्षरों को जोड़कर जब शब्द बनता है तो उस शब्द को हम पहचान सकें, इस बारे में भी हम अपना अभ्यास करते हैं और निरंतर उस पर हम अपनी पकड़ बनाने का प्रयास करते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि हमने अक्षर पहचान लिया और उस अक्षर से जो जितने भी शब्द बनते हैं वो भी हमने पहचान लिए हैं। लेकिन हमारे सामने मुश्किल तब आती है जब कोई शब्द बिल्कुल नया हो, जो हमने पहले सुना ना हो, जो हमने पहले पढ़ा ना हो, तब हम उसकी पहचान कैसे करेंगे। हमारे लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्यों दिक्कत होगी, हमें पढ़ना तो आता है, हमें अक्षर तो ज्ञान तो है, तो हमें कठिनाई क्यों होगी। कठिनाई इसलिए होगी शिक्षार्थियों क्योंकि अभी तक हमने जो शब्द पढ़े हैं उनका अर्थ हम जानते हैं, हमारे बड़े बताते हैं, हम अगर स्कूल जाते हैं तो स्कूल में हमारे शिक्षक बताते हैं, हमारे बड़े भाई बहन बताते हैं कि इस शब्द का ये अर्थ होगा। लेकिन कोई अपरिचित शब्द अगर हमारे सामने हो तो हम बिना सहायता के हम समझ नहीं पाएंगे कि इस शब्द का अर्थ क्या है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि शब्द के साथ ही उसका अर्थ जो है वो भी जुड़ा होता है। तो अगर हमें शब्द आता है, हम शब्द की पहचान कर सकते हैं, तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम उसका अर्थ भी जानते हों। अगर शब्द जानते हैं और अर्थ नहीं जानते हैं तो हमारा जो पढ़ने का जो क्रम है वो पूरा नहीं होता है, क्योंकि शब्द अपने आप में कुछ भी नहीं है, शब्द के माध्यम से ही हम उसका अर्थ समझते हैं, वो कहना क्या चाहते हैं। तो इस तरह से हमारे लिए जरूरी है कि जो शब्द है वो सार्थक हो, यानी अर्थ के साथ हो। अर्थ के बगैर अगर हम कोई शब्द पढ़ेंगे तो उसका कोई भी उपयोग नहीं है, कोई भी उसकी सार्थकता नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ शिक्षार्थियों कि हमारा जो पढ़ने का जो क्रम है, पढ़ने का जो कौशल है, उसकी अगली सीढ़ी कौन सी हुई, शब्दों के अर्थ जानना, यानी हम शब्दों को पहचाने और उन शब्दों के साथ हम उनके अर्थों को भी समझें, अर्थ को जोड़कर ही हम भाषा को समझ पाएंगे। उसके बगैर हमारा जो पढ़ने का जो क्रम है वो टूट जाएगा, वो अधूरा रह जाएगा। तो दो बातें हमने जान ली हैं। तीसरी जो मुख्य बात है जिसके बारे में हमें समझना चाहिए वो है पढ़ने की गति। हम किस गति से पढ़ें कि हम शब्दों की पहचान भी कर सकें, हम उनका सही उच्चारण कर सकें और हर शब्द के साथ जो अर्थ समाहित है, जो अर्थ जुड़ा हुआ है, हम उस अर्थ को भी समझते हुए आगे पढ़ें। ये बहुत ही ज़रूरी बिंदु है जिसको आपको रेखांकित कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा है होता है कि कई लोगों को जो शब्द हैं उन्हें पहचानने में उन्हें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, कुछ को कम समय लगता है और कुछ को ज़्यादा समय लगता है। तो जिनको शब्द पहचानने में ज़्यादा समय लगता है उन्हें उसका अर्थ समझने में भी उतना ही अधिक समय लगता है। तो अगर शब्द पहचानने की प्रक्रिया, उसकी जो गति है और उसका अर्थ समझने की जो गति है, अगर वो धीमी होगी तो हमारे पढ़ने का जो हमारा क्रम है उसमें भी बाधा आएगी। हम रुक रुक कर पढ़ेंगे और हमारी पढ़ने की जो गति है, जो स्पीड है, वो भी धीमी रहेगी। तो इस बारे में हम एक दूसरे तरीके से भी इस बात को समझ सकते हैं कि अगर आपके सामने कोई व्यक्ति एक अनुच्छेद पढ़ रहा है या कह सकते हैं कि एक कहानी पढ़ रहा है और उस कहानी का एक अनुच्छेद जो है उसे पढ़ने में वो काफ़ी समय ले रहा है, बहुत धीरे धीरे पढ़ रहा है, तो आप एक वाक्य का अर्थ अगले वाक्य से जोड़ नहीं पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि उस कहानी में, उस घटना में आगे जो क्रम हो रहा है आप उसका औचित्य नहीं समझ पाते हैं। और अगर आप ये घटनाओं का क्रम नहीं समझ पाते हैं तो आपको वो अनुच्छेद बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा कि ये बिल्कुल ही अलग अलग इकाइयां हैं जो आपके कानों में उनकी ध्वनियां पड़ी हैं, लेकिन उनके साथ जो अर्थ जुड़े हैं और उस अनुच्छेद का एक समेकित जो अर्थ है, जो एकीकृत अर्थ है, वो आपकी पकड़ से छूट जाएगा। तो आप कहानी सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसका जो औचित्य है, आप आनंद लेना चाहते हैं, आपको अच्छा अनुभव करना है कहानी, क्योंकि कहानी पढ़ना, कहानी सुनाना, कहानी सुनना अपने आप में एक आनंददायक अनुभव रहता है। और बच्चों के लिए तो आपको पता है, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत मज़े की बात रहती है जब कहानी सुनते हैं वो। तो अगर ये गति कम होगी तो स्वाभाविक सी बात है वो अर्थ समझ नहीं पाएंगे। आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया होगा कि जब भी बड़े छोटे बच्चों को कहानी सुनाते हैं, घर के जो बड़े हैं वो छोटे बच्चों को जब कहानी सुनाते हैं तो बड़ी धीरे धीरे चबा चबा के हर बात को तब वो कहानी सुनाते हैं, तो उनकी गति बहुत धीमी होती है। वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि बच्चों को अर्थ को पकड़ने में समय लगता है, तो वे उतना ही समय उस कहानी को सुनाने में भी लगाते हैं। बच्चों की समझ की गति के अनुसार वो धीरे धीरे वो कहानी सुनाते हैं। अगर उतनी ही गति में अगर बड़े बच्चे को, बड़े व्यक्ति को अगर कोई बात बताई जा रही होगी तो वो उकता जाएगा, वो बोर हो जाएगा, वो कहेगा कि जल्दी से बताओ आगे क्या हुआ, उसमें वो बेचैनी रहेगी। अगर आप जैसे अगर आप माध्यमिक स्तर के शिक्षार्थी हैं और आपको इस तरह से कोई कहानी सुनाई जाए तो आप में वो बेचैनी रहेगी। छोटे बच्चे में वो बेचैनी नहीं रहती है क्योंकि शब्दों का अर्थ समझने में और उससे उस कहानी को जोड़ने में उसे समय लगता है। तो शिक्षार्थियों और श्रोताओं, हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे लिए एक गति जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। पढ़ने के कौशल को सही ढंग से उसमें सिद्धस्थता हासिल करने के लिए, अगर हम पढ़ना जो कौशल है उसमें सिद्धस्थ होना चाहते हैं, उसमें प्रवीण होना चाहते हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी पढ़ने की गति को संयमित रखें, नियंत्रित रखें। कितनी गति पर हम पढ़ें, तो कई बार ये प्रश्न इस जब भी इस पाठ पर चर्चा की जाती है तो इस बारे में अक्सर प्रश्न आते हैं कि पढ़ने की एक आदर्श गति क्या होनी चाहिए। तो ये आप खुद तय करेंगे कि पढ़ने की आदर्श गति क्या होनी चाहिए, ये आप पर निर्भर करता है, क्योंकि आपकी जो समझने की गति है, किसी भी भाषा के वाक्यों को, शब्दों को सुनकर उनके अर्थ जोड़कर समझने की जो गति है, वही आपकी पढ़ने की गति भी होनी चाहिए। अगर आपकी गति धीमी है, समझने की गति धीमी है, तो अगर पढ़ने की गति ज़्यादा है तो सही ढंग से समायोजन नहीं हो पाएगा और आप आधी बात समझ नहीं पाएंगे। अगर पढ़ने की गति धीमी है और समझने की गति ज़्यादा है तो आप उकता जाएंगे। तो दोनों में एक बहुत ही उपयुक्त संतुलन आपको बनाना होगा। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि आप सिर्फ उसे पढ़ जाएं और आप सोचें कि अर्थ इसका बाद में समझेंगे, एक बार इसको पढ़ के ख़त्म कर देते हैं, तो वो पढ़ना ना पढ़ने जैसा ही होगा। इसलिए शिक्षार्थियों और श्रोताओं, आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा कि आपकी पढ़ने की गति कितनी हो, किस गति पर आप पढ़ें। तो शुरू में जब हम पढ़ना आरंभ करते हैं तो बच्चे बोल बोल कर पढ़ते हैं, क्योंकि एक तो उनका जो ध्यान है वो बढ़ता है, इसलिए वो बोल बोल कर पढ़ते हैं ताकि उनका जो ध्यान है वो किताब पर ही केंद्रित रहे। दूसरा एक और भी कारण हो सकता है कि वे अपने बड़ों का भी ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं अपनी ओर। इसका एक फायदा तो ये होता है कि अगर उनका उच्चारण सही नहीं है तो उनके बड़े उनको ठीक करते चलते हैं। आपने स्कूलों में भी देखा होगा कि बहुत सारे कक्षाओं में जब भी पढ़ना कौशल का अभ्यास कराया जाता है, पढ़ने का अभ्यास कराया जाता है, तो आपको पाठ्य सामग्री, आपको पाठ, आपका शिक्षक जो है वो कहते हैं कि आप चलिए आप खड़े हो जाइए अपनी सीट पर और आप इस अनुच्छेद को पढ़िए, तब वे आपके उच्चारण को सही करते हुए चलते हैं। तो ये इसका एक फायदा भी हो जाता है। लेकिन अगर आप कह सकते हैं कि आपको कोई किसी तरह का कोई बाधा नहीं आपके सामने आ रही है, तो आप मौन रूप में भी आप पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप पढ़ते हुए मनन भी करते हैं, मन मन में आप उसका अर्थ भी समझते हैं। पहले ऐसा लगता है कि आपका ध्यान बंट रहा है, लेकिन उसके बाद आप धीरे धीरे, आपको आदत पड़ जाती है और आपको अच्छा भी लगने लगता है। आपने देखा होगा कि जो वयस्क लोग हैं, जो बड़े हैं, वो बोल बोल कर नहीं पढ़ते, वो मन में पढ़ते हैं। तो छोटे बच्चों को कई बार बहुत उत्सुकता होती है कि आप किताब को देख रहे हो या पढ़ भी रहे हो, तो उन्हें बताना पड़ता है कि नहीं हम पढ़ रहे हैं लेकिन मन में पढ़ रहे हैं। तो चूंकि आप माध्यमिक स्तर के शिक्षार्थी हैं तो मेरा सुझाव यही होगा कि आप अपनी सुविधा अनुसार एक निश्चित गति पर आप अपनी सामग्री को मौन वाचन करें, आप उसे पढ़ें और साथ ही साथ उसका अर्थ भी ग्रहण करते हुए चले, क्योंकि सिर्फ गति से पढ़ने का कोई भी उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, उसकी कोई सार्थकता नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है अगर आपको उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। तो उतनी ही गति से आपको उसका अर्थ भी समझ में आना चाहिए। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ कि हम भाषा के अक्षरों की पहचान कर सकते हैं, हम उनसे बने हुए शब्दों की भी पहचान कर सकते हैं। हम सिर्फ शब्दों की और अक्षरों की पहचान करने ही तक ही सीमित नहीं है हमारा कौशल, हम शब्दों के अर्थ भी जानते हैं। और जब हम शब्दों के अर्थ भी जानते हैं तब हम अपनी सुविधानुसार एक गति में हम मौन वाचन भी कर सकते हैं। तो ये जो हमारा चरण है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। यहाँ समाप्त होता है ये चरण और यहाँ हम कह सकते हैं कि हम पढ़ने में हम प्रवीण हैं, हम बहुत अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। अब आप अपनी रुचि के अनुसार आप अखबार पढ़ सकते हैं, आप पत्र पत्रिकाएं पढ़ सकते हैं। इन पत्रिकाओं में विभिन्न प्रकार के लेख आते हैं, आप वे पढ़ सकते हैं। हिंदी साहित्य में आप उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, संस्मरण, कितनी सारी विधाएं हैं। आप इन विधाओं में अपनी पसंद की किसी भी विधा पर आप पुस्तक में पढ़ सकते हैं। आपकी अपनी रुचि पर ये निर्भर करता है। और इस तरह से आप जब निरंतर आप पढ़ते हैं कुछ किताबों को तो आपका जो शब्द भंडार है वो भी निरंतर बड़ा होता चला जाता है। आप अलग अलग परिप्रेक्ष्य समझ पाते हैं कि इस शब्द का अर्थ इस परिप्रेक्ष्य में क्या होगा और दूसरे परिप्रेक्ष्य में क्या होगा। तो अर्थों के भी जो अर्थ हैं, जो गूढ़ अर्थ हैं, जो छिपे हुए अर्थ हैं, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस, तो वो भी आप समझ पाते हैं। ये हमारा उससे भी अगला चरण है। आप कह सकते हैं कि आप में इतनी प्रवीणता आ जाती है, आप पढ़ने में इतने प्रवीण हो जाते हैं, इतने सिद्धस्थ हो जाते हैं कि आप उन अर्थों में भी जो मंशा जो छिपी हुई है, जिसका जिक्र शब्दों में नहीं दिया गया है, वो भी आप समझ लेते हैं। तो ये साहित्य को समझने की बात है, जो आप सामान्य से विशेष की तरफ जब आप चलते हैं तब आप इस कौशल में इस तरह से प्रवीण बनते चलते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक हमें बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि हम पढ़ने के जो कौशल हैं उन्हें हम किस तरह से उनकी व्याख्या करेंगे, किस तरह से उन्हें स्पष्ट करेंगे और किस तरह से हम उनका उल्लेख करेंगे। तो यहाँ हम आपको एक अनुच्छेद देते हैं, आपको अनुच्छेद एक आपको समझाने का प्रयास करते हैं और शायद इसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि जो मैंने कहा कि शब्दों के बीच में जो छिपे हुए अर्थ हैं उन्हें उन पर हम किस तरह से टिप्पणी कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी पकड़ बना सकते हैं, आपको इसका भी अंदाज़ा होगा। तो एक अनुच्छेद हमारी पाठ्य सामग्री में दिया गया है, आप ध्यान से सुने, मैं आपके लिए इसका वाचन करती हूँ। ये अनुच्छेद कुछ इस प्रकार है। आकाश में काले बादल छाए हुए थे, अचानक ही वे बादल छमाछम बरसने लगे। दरवाजे पर घंटी बजी। 8 साल की ऋतु छमाछम करती हुई गई और उसने दरवाजा खोल दिया। उसका 10 साल का भाई सुंदरेश सामने खड़ा था। वह अंदर आया। वह सिर से पांव तक पूरी तरह से भीगा हुआ था। यह देखकर उसकी मां एकदम से उस पर बरस पड़ी। तो शिक्षार्थियों और श्रोताओं, ये एक अनुच्छेद है और इस अनुच्छेद में बादलों का जिक्र है और बादलों का जब जिक्र हुआ है तो यहाँ बात हुई है बरसने की। कहा गया है बादल छमा छम बरसने लगे। वहीं पर जब माँ ने देखा कि सुंदरेश जो है वो पूरी तरह से भीगा हुआ है, तब बात हो रही है कि माँ एकदम से उस पर बरस पड़ी। तो बरसे तो बादल भी थे, बादलों ने वर्षा की और यहाँ पर माँ बरस रही है। तो माँ ने क्या बरसाया? माँ ने भी कुछ बरसाया। माँ के बरसने का तात्पर्य क्या है शिक्षार्थियों? कि माँ को क्रोध आया और माँ ने जम के डांट लगाई। आपकी माँ आपको गुस्सा करती है ना, कभी कभी आप इस तरह से कुछ काम करते हैं जो उन्हें अच्छे नहीं लगते तो आपको भी डांट पड़ती है। तो वहां पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं कि आज माँ मुझ पर बरस पड़ी। तो उसी तरह से यहाँ पर जब ये बात की जा रही है कि माँ एकदम से उस पर बरस पड़ी सुंदरेश पर, तो इसका क्या तात्पर्य हुआ कि उसको बहुत ज़्यादा डांट लगी। तो ये मैंने आपको उदाहरण दिया यह स्पष्ट करने के लिए कि एक ही शब्द जब अलग अलग परिप्रेक्ष्य में प्रयोग किए जाते हैं तो उनका अर्थ जो है वो हर भाषा के अनुसार वो बदल जाता है। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग ढंग से इन परिप्रेक्ष्यों की व्याख्या की जाती है, इन पर समझ बनाई जाती है। तो आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप बरसने से जो जैसे बादल बरसने से जो तात्पर्य आपने लिया, जो अर्थ आपने समझा, अगर आप माँ के बरसने को भी आप उसी रूप में ही समझेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो इसलिए ये हमारा पढ़ने के जो कौशल है उसका एक उन्नत, एक एडवांस्ड जिसे आप कह सकते हैं वो चरण है। तो यहाँ अगर आप ये बातें समझ सकते हैं तो मैं समझती हूँ कि आपको पढ़ना बहुत अच्छे ढंग से आ गया है। तो इस अनुच्छेद में जो मैंने आपको अभी पढ़कर सुनाया, उस अनुच्छेद में कई बातें आपने सुनी, जैसे वर्षा अचानक होने लग गई, जो सुंदरेश है वो घर पर नहीं था, घर के बाहर था और वो पूरी तरह से भीगा हुआ था। जब वो घर आया तो उसे डांट पड़ी। इसके अलावा आपने इस अनुच्छेद में कुछ और जानकारियां भी प्राप्त की कि जब ये घटना, जिस घटना का इस अनुच्छेद में जिक्र है, उस समय जो ऋतु है, जो मौसम है, वो बरसात का मौसम है। और जब कह रहे हैं कि बादल छमा छम बरस रहे हैं, यानी बहुत तेज बारिश हो रही है, तो हम ये भी हम समझ गए कि वर्षा बहुत तेज हो रही है। जो सुंदरेश है वो 10 साल का है, तो जाहिर सी बात है वो बाहर, घर के बाहर वो खेलने गया हुआ है। और जब वर्षा हुई, आरंभ हुई है, तब घर का जो दरवाज़ा है वो बंद है। ये हमें कहाँ से पता चला? अनुच्छेद में तो ये दिया ही नहीं हुआ है। तो कैसे पता चला? जब उन्होंने कहा कि 8 साल की ऋतु छमा छम करती हुई गई और उसने दरवाज़ा खोल दिया, यानी दरवाज़ा बंद था तभी तो खोला, तो ये बात भी यहाँ पर आपको स्पष्ट हुई है। और जब सुंदरेश घर पर आया तो वो भीगा हुआ था, और उस भी उसके भीगे हुए रूप को देखकर माँ को किस माँ ने गुस्सा किया, तो माँ ने क्यों गुस्सा किया होगा? क्या माँ ने उसे खेलने से मना किया होगा? ऐसा नहीं लगता कि माँ ने खेलने से मना किया होगा। माँ ने उसको भीगे हुए उसको भीगा हुआ देखा और तब उसने उसको गुस्सा किया है। यानी भीगने से क्या होगा, उसको सर्दी जुकाम हो जाएगा, वो बीमार हो जाएगा। और जो माँ है उसे चिंता है, हर माँ को चिंता होती है कि उसका जो बच्चा है उसका स्वास्थ्य ठीक रहे। अगर वो भीग गया है तो यानी उसका स्वास्थ्य खराब होने वाला है, इस बात से माँ ने उसे गुस्सा किया है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जितने भी जानकारियां आपको इस अनुच्छेद में मिली, उससे बहुत सारी बातें आपने अपने आप से समझ ली। अगर ये जो समझ है, जो इस अनुच्छेद में छिपे हुए अर्थ जो हैं, अगर आपने वो नहीं समझे हैं, तो शिक्षार्थियों मुझे ये कहना होगा कि आपका जो कौशल है, पढ़ने का कौशल, वो बहुत ही अच्छे स्तर पर नहीं है। अच्छे स्तर पर इस कौशल को समझने के लिए, या मैं अगर ये घोषित करूं कि आपका जो पढ़ने का कौशल है बहुत ही बेहतरीन है, तो आपको ये जो शब्दों के जो अर्थ हैं, जो जानकारियों के जो छिपे हुए जो अर्थ हैं, इन्हें भी आपको समझना होगा। तो इस तरह से ये जो निहित अर्थ हैं, इन बातों को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो शिक्षार्थियों, श्रोताओं, इसका क्या निष्कर्ष हुआ? इसका निष्कर्ष ये हुआ कि जब हम ठीक से पढ़ें और पूरी तरह से पढ़ें, ये ठीक से पढ़ना और पूरी तरह से पढ़ना तब हमारा औचित्यपूर्ण रहेगा, तब उचित रहेगा, जब हम इस सामग्री में जो बातें कही हुई हैं, जो स्पष्ट हैं, जो विचार हैं, उनकी हम विवेचना कर सकें, उनकी हम व्याख्या कर सकें, जब हम समझ सकें, अपने शब्दों में हम उसे व्यक्त भी कर सकें कि ये यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, और साथ में ही हम उसका आनंद भी ले सकें। अगर हम सिर्फ उसकी विवेचना कर रहे हैं तो हमारे लिए वो बहुत ही, कह सकते हैं, बहुत ही बोझ ढोने जैसा हो जाएगा, और हम उसमें आनंद नहीं ले रहे हैं तो हमारे लिए लगेगा कि अरे इसको पढ़ो और इसको साइड में कर दो। ज़्यादातर हमारे साथ क्या होता है कि जब हम अपनी इच्छा से कोई सामग्री पढ़ते हैं तो हम उसमें आनंद लेते हैं, जब कोई सामग्री हमें दी जाती है पढ़ने के लिए तो हम उतना आनंद उसमें नहीं लेते हैं। हालांकि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि पढ़ना अपने आप में ही एक आनंदपूर्ण अनुभव होना चाहिए। तो हम इन विचारों की विवेचना करें, उनका आनंद लें, और इसे लगातार अपने ज्ञान का जो भंडार है हमारा, उसमें संचित करते हुए चलें। तो एक बार हम फिर से दोहरा लेते हैं, हमने किन किन बिंदुओं पर चर्चा की है। शब्दों और उनसे बने वाक्यांशों को हमने पहचाना है, कैसे पहचानते हैं, फिर शब्दों के अर्थ हम जाने, फिर उचित गति, जरूरी नहीं है कि तीव्र ही हो, उचित गति से पाठ्य सामग्री का मौन वाचन करना हम सीखें। जो भी सामग्री हम पढ़ रहे हैं, उस सामग्री में जो तथ्य दिए हुए हैं, जो विचार दिए हुए हैं, उनको हम जानें। इसके अलावा हमारा एक और महत्वपूर्ण चरण है वो ये है कि जो ये तथ्य हैं, जो विचार हैं, उनका आपस में क्या संबंध है, किस तरह से ये आपस में जुड़े हुए हैं ये विचार, हम इसको भी सही ढंग से इसकी इस पर अपनी समझ बना सकें, इन्हें समझ सकें और फिर हम निष्कर्ष निकाल सकें। तो ये सारे चरण पढ़ना जो कौशल है उसको सही ढंग से उस पर अपना आधिपत्य बनाने के लिए, उसमें सिद्धस्त होने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो शिक्षार्थियों, जैसा कि हमने आपको बताया कि हम साहित्य की अलग अलग विधाओं को हम पढ़ सकते हैं जिस तरह की भी हमारी रुचि हो, और हम धीरे धीरे इसमें सिद्धस्त होते चले जाते हैं। हम कह सकते हैं कि जब हम ये पांचों चरण हम पूरे कर लेते हैं तो काफ़ी कुछ हम इस बारे में सीख जाते हैं कि हम किस तरह से इसका निष्कर्ष निकालेंगे, इसकी जो घटनाएं हैं उनके क्रम को समझ पाएंगे। आपके आपकी परीक्षाओं में, चाहे वो माध्यमिक स्तर की हों, आप जब और अन्य परीक्षाएं देंगे, प्रतियोगी परीक्षाएं देंगे, तो उसमें भी आपको अपठित गद्यांश मुख्य रूप से आप देखेंगे कि ये आपको निरंतर मिलता रहेगा। प्रश्न पत्रों में अपठित गद्यांश जो है वो अक्सर देखा जाता है। तो इस कौशल को बहुत अच्छे ढंग से लेकर आप अपठित गद्यांश को बहुत ही अच्छे ढंग से आप लिख सकते हैं, आप उनके जो उत्तर हुए। अपठित गद्यांश के बारे में मैं, वैसे आप जानते भी होंगे, लेकिन मैं आपको संक्षेप में बता देती हूँ कि अपठित गद्यांश में एक या दो अनुच्छेद दिए जाते हैं, और उन अनुच्छेदों में एक किसी केंद्र बिंदु पर ये अनुच्छेद लिखे हुए होते हैं, तो और उसमें और बहुत सी जानकारियाँ दी जाती। आपको ये अपठित गद्यांश आपको पढ़ना है, और उसके बाद सामान्यतया 4 या 5 प्रश्न दिए जाते हैं, उन प्रश्नों का आपको उत्तर देना होता है। तो यहाँ पर भी आपकी जो ये पढ़ने की गति है ये बहुत काम आती है। आप अगर आपकी गति अच्छी है तो आप इसे बहुत जल्दी पढ़ भी लेते हैं, और आप समझ, क्योंकि ये जितने भी चरण हैं ये सारे आपके इस अपठित गद्यांश को करने में बहुत कारगर सिद्ध होते। तो इस तरह से शिक्षार्थियों हम ये कह सकते हैं कि आप जब भी इस तरह के प्रश्न करें अपठित गद्यांश से संबंधित, तब आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि उसका केंद्र बिंदु क्या है, उस गद्यांश में किस तरह की बातें की गई हैं, किस तरह के तथ्य दिए गए हैं। अब जब हम तथ्यों की बात करते हैं या विचारों की बात करते हैं, तो आप इस बात को भली भांति समझ लीजिए कि कुछ विचार जो हैं वो मुख्य होते हैं, और कुछ विचार एक तरह से इन मुख्य विचारों पर बल देते हैं, वे अलग से कोई भिन्न विचार नहीं रखते हैं। तो ये सारी बातें होती हैं, और एक उसका केंद्रीय बिंदु जिसे हम कह सकते हैं, वो एक केंद्रीय बिंदु होता है। आपको उस केंद्रीय बिंदु को जल्द से जल्द समझने का प्रयास करना है कि वो केंद्रीय बिंदु क्या है। उस बिंदु के चारों तरफ ही ये सारे तथ्य, ये सारे विचार जो हैं वो घूमते हैं। तो अगर आप वो केंद्रीय बिंदु समझ लेते हैं तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि वो अपठित जो गद्यांश है वो आपके लिए आसान हो जाता है। और अगर आपको अच्छे ढंग से नहीं समझ में आया है तो आप उसे एक बार और पढ़ लेते हैं, और उससे आपको जो थोड़ी बहुत आपको शंका रह जाती कई बातों के बारे में वो भी आपकी बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। और उसके बाद जो प्रश्न दिए जाते हैं इन अपठित गद्यांश के आधार पर आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना होता है, वे प्रश्न आप बहुत ही आराम से बहुत ही आसानी से आप हल कर लेते हैं। तो इन सब का आपको ध्यान रखना है। इनके उत्तर जो हैं वो इस गद्यांश में ही शामिल रहते हैं, तो आप अगर इन्हें ढंग से अच्छे से आप पढ़ते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो इस बात का आप जब भी आप इस तरह का कोई प्रश्न पत्र करें तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, चाहे वो NIOS की परीक्षा हो या कोई अन्य परीक्षा, कोई प्रवेश परीक्षा हो, किसी आगे चल के जब आप किसी सेवा में जाएंगे, किसी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे तो वहाँ पर हो, कोई लिखित परीक्षा आपकी हो, तो भी आपको इन बातों का, ये बातें जितनी मैं आपसे कर रही हूँ ये बातें आपके लिए उस समय भी उतनी ही उपयोगी होंगी। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अभी से इस कौशल पर अपनी पकड़ बनाएं और बहुत अच्छे से आप इस पर पढ़ाई करें और निरंतर अपना शब्द भंडार भी बढ़ाएं ताकि आप अच्छे ढंग से अपनी विचारों को अभिव्यक्त कर सकें। कुछ इसी तरह से आप कह सकते हैं कि अपठित कविता, हालांकि अपठित कविता जो है वो हमारे माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में तो आती हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में या किसी अन्य परीक्षा में इस तरह से आए मुझे इसका भान नहीं है, इसका ज्ञान नहीं है। तो यहाँ जब हम परीक्षा की बात करते हैं, माध्यमिक स्तर की जो हमारी परीक्षा है उसकी बात करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको ये पढ़ने का जो कविता पढ़ने का जो कौशल है ये भी आपका बहुत ही काम का है, और इसमें भी आपको जो है पहले से ही आप तैयारी रखें तो आपको बहुत ही सुविधा रहती है। जैसे एक कविता जो है यहाँ दी गई है और उसके बाद आप इसका अभ्यास आप कर सकते हैं और इसमें इसके आधार पर कुछ सही और गलत के प्रश्न हैं कि आप इस पर सही या गलत का निशान लगाइए इन कथनों पर, तो आप इस तरह से भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। हालांकि परीक्षा में सही गलत के बजाय आपसे सीधे सीधे विवरणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें आपको जानकारी देनी होती है। तो शिक्षार्थियों श्रोताओं, मुझे लगता है कि ये चर्चा हमारी सफल भी रही है और सुफल भी रही है, इसका एक अच्छा परिणाम निकल रहा है कि आप लोग भी पढ़ाई करने और पढ़ने के प्रति आपकी रुचि बढ़ी होगी, ये मैं उम्मीद करती हूँ। और इस कौशल को आप, इस पर आप लगातार आप अभ्यास करते रहिए, इसका बस यही एक तरीका है इस कौशल को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का। धन्यवाद।